श्लोक उत्कर्षवान गुणः कश्चिद् यस्मिन् नुक्ते प्रतीयते तदुदाराह्यं तेन सनाथा सर्वपद्धति अर्थिनाम कृपणा दृष्टिस्त्वन् मुखे पतिता सकृत् तदवस्था पुनर्देव नान्यस्य मुखमिक्षते। जिसे कहने पर कोई गुण उत्कर्ष से प्रशस्त प्रतीत होता है वह उदार नाम से पुकारा जाता है, उससे सब मार्ग सनाथ है। तुम्हारे मुख पर एक बार पड़ी हुई याचकों की दीन दृष्टि है, हे महाराज, उसी रूप में दूसरे का मुंह नहीं देखती। अगले चार श्लोकों में उदारता नामक सातवें गुण का वर्णन दो मत दिखाकर दो प्रकार से किया गया है। दंडी के अनुसार यह अर्थ गुण है। काव्य के किसी चरित्र की शूरता, उदारता, चतुरता, सुंदरता आदि गुणों का ऐसे ढंग से वर्णन किया जाए कि उसके वे गुण अत्यंत उत्कृष्ट रूप में उभर कर सामने आए। काव्य की यह विशेषता उदारता कहलाती है। यह गुण काव्य के सभी मार्गों में आदर पाता है। सर्व पद्धति की व्याख्या दो प्रकार से की गई है। रत्नश्री ज्ञान और वादी जंघालदेव ने सारा काव्य अर्थ किया है। हृदयंगमा में व्याख्या विकल्प उपलब्ध है। गौण वैदर्भयो पद्धति सर्वकाव्य नाटकादि पद्धतियों व रत्नश्री का कहना है। उत्कर्षवान गुण उदार नहीं होता, अपितु उससे सारा काव्य ही उदार हो जाता है। परंतु गुणों के इस प्रकरण में सर्वत्र मार्गों की ही चर्चा की गई, काव्य की नहीं। समाधि के प्रसंग में आगे यही आशय दिया भी है। अतः यहाँ सब पद्धतियों से गौण वैदर्भ मार्ग ही लेने उचित हैं। किसी राजा को सीधे सीधे दीन याचकों की दरिद्रता दूर करने वाला न कहकर उसकी उदारता को भंगी से प्रकट किया गया है। तुम्हारे मुख पर एक बार पढ़ने के बाद याचक की दीन दृष्टि पुनः किसी अन्य दाता के मुंह पर दीन होकर नहीं पड़ती। अर्थात वह राजा पहली बार में ही उन याचकों को इतना दे देता है कि वे दरिद्र नहीं रहते। श्लोक इति त्यागस्य वाक्ये अस्मिनुत्कर्ष साधु लक्ष्यते अनेनैव पथान्यच्च समान न्याय मुह्यताम् श्लाघ्यैर विशेषणैर युक्त मुदारम कैश्चिदिष्यते यथा लीलाम्बुज क्रीडा सरोहेमांग दादय। इस वाक्य में दान का उत्कर्ष भलीभांति लक्षित होता है। इसी प्रकार से और भी ऐसी ही विशेषता वाले कथन की कल्पना कर ली जाए। कुछ आचार्यों को श्लाघा योग्य विशेषणों से युक्त कथन उदार अभिष्ट हैं, जैसे लीला कमल क्रीड़ा सर स्वर्णांग स्वर्णांगद आदि। दंडी ने उत्कृष्ट गुण के रूप में उदाहरण दानशीलता का दिया है। लोक में इस गुणों को भी उदारता कहते हैं। मानवीय उदारता गुण को काव्य के उदारता गुण के उदाहरण के रूप में देना मात्र संयोग नहीं प्रतीत होता। अन्य गुणों के उत्कर्ष की व्यंजना से भी उदारता गुण निष्पन्न होता है। रत्नश्री ज्ञान ने इसका उपलक्षक उदाहरण यह दिया है। हे महाराज, तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियां तुम्हारा नाम लेने मात्र से विधवाओं के समान शोक से अरुण आंखें धारण करती हैं। इस कथन में राजा के पराक्रम का उत्कर्ष वर्णित है। इसी प्रकार अन्य गुणों के उत्कर्ष वर्णन से जन्य औदार्य गुण के उदाहरण खोजे जा सकते हैं। यह औदार्य गुण अर्थगत है। अगले 19वें श्लोक में उदारता का निरूपण एक अन्य रत्नश्री के मत में गौणीय दृष्टि से किया गया है। कई बार शब्दों के साथ प्रशंसा युक्त विशेषणों का प्रयोग उन शब्दों में उत्कर्ष लाने के लिए किया जाता है। इससे उन शब्दों का अर्थ बदल नहीं जाता, अपितु उसमें उत्कर्ष आ जाता है। कमल स्वभावतः सुंदर होता है, उसके साथ लीला विशेषण लगाने से प्रणयिनी द्वारा विलासार्थ धारित कमल अर्थ प्रकट होता है। इसी प्रकार क्रीड़ा सर वीरा विहार सरोवर मणिल मेखला आदि शब्द लिए जा सकते हैं। आडंबर प्रिय गौड़ी कवि इस प्रकार के औदार्य का प्रयोग अपने काव्य में किया करते हैं। भारी भरकम विशेषणों का प्रयोग करने में बहुत अपेक्षा सूचक सर्वनाम कैश्चित के प्रयोग से इस मत के प्रति दंडी की अरुचि सूचित होती है। दंडी को गौण मार्ग प्रिय नहीं है, यह इस प्रकरण में सुस्पष्ट है। श्लाघ्य विशेषणों का प्रयोग भी एक प्रकार का आडंबर है। अतः रत्न श्री ज्ञान ने इस पक्ष को आडंबर प्रिय गौणों का मत माना है। कुछ अन्य टीकाकार इससे सामान्य कवियों को ही लेते हैं।